हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। एक बात आपको समझ में आना चाहिए, हम सब लोग को समझ में आना चाहिए कि आत्मा का परमात्मा से गुणात्मक तादात्म्य है, यानी कि हम लोग भी सत चिद आनंद हैं और भगवान भी सचिद आनंद हैं, लेकिन मात्रात्मक तादात्म्य नहीं है। मतलब कि भगवान विभू हैं और हम लोग अणु हैं। जैसा कि हम लोग ने सुना था अभी पहले के चर्चाओं में, आत्मा का जो साइज है वो बाल के अग्र भाग के 10,000वां भाग है, लेकिन भगवान अनंत हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं। और उदाहरण एक और दिया जाता है चिंगारी का, एक चिंगारी और एक महान अग्नि, ये एक समान होते हैं गुणों की दृष्टि से, लेकिन मात्रा की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। तो हम भगवान जो हैं वो कभी भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, अपितु माया के अधीश्वर हैं, लेकिन हम लोग माया के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ा अंतर है हम में और भगवान में। और ऐसा भी नहीं है कि माया से मुक्त होने के बाद हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता, अपितु अपने दासत्व की के प्रति बहुत सचेत हो जाएंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, माया से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि हम समझें कि हम भगवान हो गए, इसका अर्थ ये है कि हम भगवान के दासत्व के प्रति, जो हमारा दासत्व है, शाश्वत दासत्व है भगवान के प्रति, उसके प्रति हम पूर्ण रूप से सचेत हो जाएंगे। तात्पर्य, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है, किसी निराकार का ध्यान नहीं करता। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। जैसे यहां पे भी शब्द आ रहा है माम, स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आप देखिएगा इस तात्पर्य में हो रहा है। जब हम इस पर पढ़ को पढ़ रहे हैं तो हम सोचेंगे, अरे भगवान का हम दर्शन तो अभी हृदय में नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें एक जगह बैठ के ध्यान करना चाहिए। ये पद्धति भक्ति की नहीं है। भक्ति की पद्धति है कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, अपने सारे कार्यों को भगवान कृष्ण को समर्पित व्यक्ति करे, या ऐसे कहिए कि कृष्ण के लिए ही सारे कार्यों को करे, ये एक भक्त का लक्षण है। तो ऐसा व्यक्ति जब होता है जो लगातार भगवान की प्रेममय सेवा में लगा रहता है, तो भगवान उसके हृदय के अज्ञान को स्वयं ही नष्ट कर देंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज श्रीमद् भागवत में आती है, नारद मुनि बताते हैं कि जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना शुरू करते हैं, तुरंत ही भगवान उनके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। तो एक योगी का पद्धति, या कह सकते हैं अष्टांग योगी की जो पद्धति है, वो है यम नियम ध्यान आसन इत्यादि के द्वारा अपने चित्त को भगवान में लगाना, हृदय में, ये एक तरीका है। लेकिन भक्ति का तरीका या भक्ति का पद्धति जो है वो ये है कि अपनी इंद्रियों को लगातार भगवान की सेवा में लगातार लगाए रखना, और जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होंगी, मन शुद्ध होगा, भगवान स्वतः भक्त के हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है, निखिलासु अव्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्रा में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, दिक्कालाद्य अन्वच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति शिप्रम जीवो ब्रह्मणि योज्येत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त हो जाता होता है। देश काल से अतीत का अर्थ है भगवान हर देश में, हर समय, हर जगह पे हैं और हर काल में हैं। जैसे कि कुछ हमारे माता पिता जो हैं वो किसी के माता पिता वर्तमान काल में नहीं हो सकते हैं, लेकिन भूतकाल में तो रहे होंगे, तभी तो व्यक्ति जिंदा है, और आगे भविष्य काल में तो निश्चित रूप से नहीं रहेंगे इस जन्म के। लेकिन भगवान भूतकाल में भी रहते हैं, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी हैं। तो अब व्यक्ति कहेगा अगर हर जगह हैं और हर समय हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? तो ये तो आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप जब व्यक्ति ध्यान करता है तो व्यक्ति माया के आवरण से निवृत्त हो जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप विचार करें कि भगवान सब जगह हैं और हर समय हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हम भगवान के संपर्क से, एक तरह से क्या सत्य बात यही है कि भगवान के संपर्क से हम कभी अलग नहीं है, लेकिन माया के आवरण के कारण, माया के ढका हुआ कह सकते हैं हमारे पर, जो हमारी चेता को ढक लिया है माया ने, उस कारण से हम सोचते हैं कि भगवान से हम अलग हो गए। जैसे मैं इस समय रूम में बैठा हूं और धूप आ रही है, तो इससे पहले भी धूप आ रही थी लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण मैं सोच रहा हूं कि अभी धूप नहीं है और मुझे बल्ब और लाइट जलाने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो इस सूर्य के प्रकाश से मेरा पूरा रूम आलोकित हो गया और मैं यहां पर देख पा रहा हूं किस प्रकार से सूर्य भले बहुत दूर हो लेकिन सारे जगह वो सर्वव्यापी भी है और सभी, ये तो सब जानते हैं कि पूरी प्रकृति जो है सब कुछ सूर्य की शक्ति पर आधारित है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, यानी कि भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी हमारी तरफ से है, हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो चेतना के फ्लो है वो बाहर की तरफ है, माया से मुग्ध है, इस कारण से भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो जैसे इसमें यहाँ सोल्यूशन क्या बता रहे हैं, बार बार भगवान के रूप में, नाम रूप गुण लीला में अपने मन को फंसाए रखे व्यक्ति तो ये माया का आवरण हट जाएगा और फिर व्यक्ति अनुभव कर पाएगा कि भगवान के संग में है। भगवान के संग में हमेशा हैं लेकिन अनुभव कर पाएंगे कि हम भगवान के संग में हैं, ये अंतर होगा। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपाल तपनी उपनिषद भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है, एकोपि सन बहुधा योग भाति। यद्यपि भगवान एक हैं किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसमें उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य अपनी जगह स्थित है लेकिन बहुत सारे जलाशयों में उसका प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है, यानी रिफ्लेक्ट होता है, तो उसी प्रकार से भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में एक्सपैंड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कट गए और खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता। जैसे कि सूर्य अपनी सत्ता को खोता नहीं है बावजूद इसके कि उसका जो रूप है वो बहुत जगह प्रतिफलित होता है। एक एग्जाम्पल और दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है जैसे वो अपने ऑफिस में रहकर कुछ बोल सकते हैं लेकिन उनका चित्र जो है वो विभिन्न प्रकार के टीवियों में पूरे देश में एक ही समय में हर जगह व्याप्त हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से या सूर्य भी अपनी शक्ति से इस प्रकार से सर्वव्यापी हो सकता है तो भगवान क्यों नहीं हो सकते सबके हृदय में। और निर्दोष हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? योगी निर्दोष हो जाता है मतलब हमारा दोष क्या है यही समझ में आना चाहिए। दोष तो बस खाली यही है कि अपने आप को भगवान से अलग देखना। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति देखेगा कि सब कुछ भगवान का ही है, भगवान सब कुछ सर्वव्यापी हैं, तो कहीं पर भी उसकी भोग दृष्टि नहीं होगी, अपितु हर वस्तु को देखकर उसका भगवत प्रेम बढ़ेगा ही। एक इंटरेस्टिंग बात अभी मेरे मन में आ रही है कि जब भोगी व्यक्ति है, कामुक है, वो हर वस्तु का भोग अपने लिए करना चाहता है और जितना वो उसको भोग करता है उतना उसकी इच्छा और बढ़ जाती है उसका भोग करने के लिए। लेकिन एक योगी जो भक्त है वो हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना चाहता है और उस अभ्यास से और अधिक स्पृहा बढ़ जाती है कि वो कैसे कृष्ण की सेवा कर सके। और तो इसी जगत में दोनों व्यक्ति रह रहे हैं, एक योगी और एक भोगी, लेकिन देखने के दृष्टिकोण के कारण कार्य की प्रवृत्ति जो है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। एक एव परो विष्णु, इसी प्रकार स्मृति शास्त्र में का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवत बहुदे धेयते। विष्णु एक हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। बहुत सुंदर बात है, इसी श्लोक को हमने अभी चर्चा किया था, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें वही श्लोक इसमें भी मिल गया, तो यहाँ रुकेंगे।